a new way of living. ब्रह्मा कुमारी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की तरफ से 3 days ऑनलाइन लाइव कॉन्फ्रेंस माउंट आबू हेडक्वार्टर से 15 से 17 मई. स्पीड, सेफ्टी, स्पिरिचुअलिटी, ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग, इमोशनल हीलिंग, कंपैशन इन एक्शन और राजयोगा मेडिटेशन जैसे गहरे विषयों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ समझाया जाएगा. साथ ही होंगे उमंग उत्साह बढ़ाने वाले गीत. देखिए अवेकनिंग चैनल पर टाटा स्काई 1084, जियो 1060.
शांति, नमस्ते. कहते हैं हो अंधेरी रात पर दीपक जगाना कहाँ मना है. आज हो रही है ऑनलाइन मुलाकात पर मुस्कुराना कहाँ मना है. आपकी मुस्कुराहट के साथ आज ब्रह्मा कुमारीज की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग इस ऑनलाइन इंस्पिरेशंस 3 दिवसीय लेक्चर सीरीज का शुभारंभ कर रही है. इस बातों को सुनते हुए हम अपने अपने स्थानों पर फिजिकली तो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, लेकिन जब जिस समय और जहां पर इस सीरीज में बताई गई प्योर पॉजिटिव थॉट्स को हम सुनते हैं तो उसी समय पर उसी स्थान पर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्योर पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स रेडिएट करेंगे. स्थान अलग अलग हैं, लेकिन हम सब की मन की फ्रीक्वेंसी एक रहेगी. वैसे जब कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो दीपक जगाते हैं और ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर गीत है, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में. तो आइए आज भी इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए हम अपने मन में 3 शुभ संकल्पों के दीपक जगाएंगे. आगे चलते इस विंग की जो चेयरपर्सन है आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी, उनकी ब्लेसिंग्स भी हम सुनेंगे. फिर भारत के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं रिस्पेक्टेड नितिन गडकरी जी, उनकी भी ग्रीटिंग्स और इनॉग्रल एड्रेस हम सुनेंगे. और उसके बाद डॉक्टर गिरीश पटेल और भ्राता ईवी गिरीश द्वारा एक बहुत सुंदर कॉन्वर्जेशन इमोशनल हीलिंग इस विषय पर हम सुनेंगे. लेकिन आइए शुरू करते हैं अपने मन में 3 शुभ संकल्पों के दीप जलाने से. बहुत ही शांत स्थिर एक मेडिटेटिव अवस्था में 1 मिनट के लिए बैठते हैं. ये स्टेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आइए मन में 3 दीपक जगाएं और घर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रकाश फैलाएं.
शुभ संकल्प,
पहला संकल्प, मेरी हर सोच में समर्थी है.
होगा प्रेम
मेरी हर सोच में
सुख ही समृद्धि है। शुभ संकल्प
दूसरा
जलाए
मेरे हर कर्म में सावधानी है। मेरे हर कर्म में सावधानी है। तीसरा मेरा हर व्यवहार सुखदायी है। मेरा हर व्यवहार सुखदायी है। तो भाइयों और बहनों, समर्थी, सावधानी और सुखदायी, ये तीन दीपक आज स्पीड, सेफ्टी, स्पिरिचुअलिटी के अम्ब्रेला थीम के अंतर्गत आयोजित इस प्रोग्राम में हमने जगाए हैं। और आइए अब चलते हैं ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू, जहां पर इस ट्रांसपोर्ट विंग की चेयरपर्सन रिस्पेक्टेड निर्मला दीदी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हैं।
अपने अपने
शांति
जग उजियारा होगा प्रेम से
दीप प्रज्वलित हुआ। भगवान को कहते हैं हमें अंधेरे से उजियाले में ले चलो, तो भगवान आते हैं अज्ञान अंधकार दूर करने और आकर ज्ञान का उजियाला करते हैं। तो अब हमें रूहानियत के आधार से अपने आप को एनलाइटन करना है, हमें ज्ञानी बनना है। ट्रांसपोर्ट विंग का सेफ्टी, स्पीड और स्पिरिचुअलिटी में आप सब आए हो। आजकल हरेक जल्दी ती जल्दी अपने नियत स्थान पर पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी ते जल्दी पहुंच जाए, तो स्पीड ज्यादा रखते हैं, सेफ्टी नहीं रहती। परंतु अभी हमें अपनी स्पीड पुरुषार्थ की ऐसी तेज करनी है ताकि हम अपने नियत स्थान मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सके। तो हमारा लक्ष्य अभी होना चाहिए मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का, क्योंकि जब लोग शरीर छोड़ते हैं समझते हैं हम स्वर्ग में जाएं, परंतु स्वर्ग में जाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जितना स्पीड से पुरुषार्थ करेंगे तो अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो इस विंग के कॉन्फ्रेंस में आप इन सब बातों को समझेंगे और पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। ओम शांति।
दीदी ने कितनी सुंदर बात बताई, मुक्ति, अर्थात अब समय है कि हम अपने आप को कई प्रकार की बॉन्डेजेस से फ्री करें। कहते हैं छोड़ो तो छूटो, तो अब समय है छोटी बड़ी बातों को स्वयं छोड़ करके अपने आप को फ्री करने का। और मुक्ति के साथ दीदी ने बताया जीवन मुक्ति, अर्थात आज लाइफ ने मुझे जो दिया है उसमें मैं सुख का अनुभव कर सकूं, संतोष का अनुभव कर सकूं। तो इस प्रकार से रिस्पेक्टेड दीदी ने हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की इंस्पिरेशन दी है। और आइए अब चलते हैं हमारे आदरणीय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिस्पेक्टेड नितिन गडकरी जी, जिनका भी ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के साथ बहुत ही स्नेहमयी संबंध और संपर्क रहा है। 2015 में ब्राजील में हुई रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में भी आपने ब्रह्मा कुमारीज रिप्रेजेंटेटिव्स को मुलाकात की थी, अपना समय दिया था और सदैव ही हमारे स्नेही और शुभकामना रखने वाले बड़े भाई रहे हैं। तो आइए इस ऑनलाइन सीरीज के प्रति आपकी इंस्पिरेशंस और आपकी शुभकामनाएं क्या हैं, सो सुनते हैं रिस्पेक्टेड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी।
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड ट्रैवल, इन तीनों से रिलेटेड सभी जो भाई और बहनें इकट्ठा हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देना चाहता हूं। मुझे पता है कि कोरोना के कारण पिछले कुछ दिनों में निश्चित रूप से अनेक समस्याओं का सामना आप सब लोग कर रहे हैं, पर हमने तय किया है कि आप सबको साथ में लेकर इस समस्या का निराकरण भी करेंगे, ये लड़ाई भी जीतेंगे और उसके बाद जो आर्थिक लड़ाई है वो भी निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर जीतेंगे। विशेष रूप से हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, इलेक्ट्रिक कार आई है, इलेक्ट्रिक बसेस आई है और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये भी लाने की कोशिश हो रही है कि हमने मुंबई से दिल्ली के बीच में एक बड़ा हाईवे 1,00,000 करोड़ का बना रहे जिसका काम शुरू हो गया है, लैंड भी एक्वायर्ड हो गई है और 62 में से 32 पैकेजेस अवार्ड भी हो गए हैं। 3 साल के अंदर ये हाईवे पूरा होगा। आखिर टूरिज्म को और ट्रैवल इसको अगर बढ़ाना है तो रोड अच्छे चाहिए। हम 4 धाम का रोड बना रहे हैं, उसका काम जोरों में शुरू है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो साल भर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जा सकोगे और इसलिए रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। मैं मानता हूं कि रोड चाहिए, रोड साइड एमिनिटीज चाहिए, पेट्रोल पंप चाहिए, रेस्टोरेंट्स अच्छे चाहिए, क्लीननेस चाहिए और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के हिसाब से भी क्लीननेस चाहिए। 2000 हम लोग रोड साइड एमिनिटीज भी बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अलग अलग जगह पर हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको हम 2 लेन 4 लेन रोड से जोड़ रहे हैं और वहां स्वाभाविक रूप से रहने की व्यवस्था, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर होगा तो हमारे जो प्रवासी है उनको जाने में सुविधा होगी। मुझे लगता है कि देश के अंतर्गत भी हम लोग टूरिज्म के बारे में ज्यादा अच्छी सुविधाएं तैयार करें, इससे लोगों का ट्रैवल बढ़ेगा और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने इसका आयोजन किया है। मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से आने वाले समय में हमारे इस सेक्टर की तस्वीर बदलेगी। लोग प्रवास के लिए निकलेंगे, तीर्थाटन के लिए निकलेंगे तो अलग अलग प्रकार की नई टेक्नोलॉजी को लेकर टूरिज्म कैसे बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कैसे करें और इसके कारण हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम कैसे सुधारें और देश की इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें, यही हमारी सोच है। आपके इस सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं और निश्चित रूप से आपका ये सेमिनार लोगों को नई दिशा देगा, सोचने की नई दिशा देगा और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण एक प्रेरणा देने का कार्य करेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद, नमस्कार।
रिस्पेक्टेड मिनिस्टर ने सच ही कहा, क्लेनलीनेस का बहुत महत्व है, एनवायरमेंट में भी और साथ साथ हमारे मन में भी। और इस ऑनलाइन सीरीज के दौरान जो हम प्योर पॉजिटिव थॉट्स सुनेंगे ये जरूर ही हमारे मन को क्लेंस करेंगे और साथ साथ जो भारत उन्नति की ओर जा रहा है इस बातों को सुनकर के हमें भी बहुत हर्ष और गौरव महसूस होता है। और अब चलते हैं आज का जो मुख्य विषय है उसकी ओर, इमोशनल हीलिंग, जो वर्तमान समय एक बहुत ही अहम विषय है और जिस मोड़ से ये संसार गुजर रहा है उसमें तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और डॉक्टर गिरीश पटेल जो बाय प्रोफेशन एक साइकोथेरेपिस्ट है और बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी आपने लिखी हैं और आपके साथ भ्राता ईवी गिरीश जी कि जिनका ह्यूमर ही सभी को हील कर दे, तो ऐसे ही डॉक्टर गिरीश विद ब्रदर ईवी गिरीश एक बहुत सुंदर कॉन्वर्जेशन के जरिए हमें इमोशनल हीलिंग की ओर ले जाते हैं। तो आइए इस पहले सत्र का हम सभी लाभ लेते हैं।
ओम शांति, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग की तरफ से स्पीड सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। इस अवसर पर भारतीय रेलवेज, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और टूरिज्म के क्षेत्र से संबंधित जो भी भाई बहनें आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की तरफ से आज के इस सत्र में बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कशन का विषय है वो है इमोशनल हीलिंग, और इस चर्चा में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय रिस्पेक्टेड डॉक्टर गिरीश पटेल अब मौजूद हैं, जो कि MBBS डॉक्टर रहे हैं। उन्होंने PhD इन साइकोथेरेपी में किया है और उनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ लंदन की उपाधि भी प्राप्त है। वो सिर्फ एक साइकोथेरेपिस्ट नहीं है बल्कि एक बहुत ही जाने माने इंटरनेशनल ट्रेनर और ऑथर हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 40 से भी ज्यादा देशों में भ्रमण कर उन्होंने काफी लोगों को साइकोथेरेपी के फील्ड में मोटिवेशन, उमंग, उत्साह और इंस्पायर किया है। और सबसे अच्छी उनकी विशेषता यह है कि वो मेडिकल साइंस, मेडिसिन, योगिक टेक्निक्स, मेडिटेशन, हीलिंग टेक्निक्स को बहुत अच्छी तरीके से उसका एक समन्वय लेकर के एक होलिस्टिक, एक बहुरूपी तरीके से अपने जो मनोरोग के जो पेशेंट्स है उनकी चिकित्सा करते हैं, और जो आम तौर पर जो लोग हैं उनका भी वो मार्गदर्शन इन सभी स्तंभों के आधार से करते हैं। मैं छोटा गिरीश हूं, मेरा नाम DKEV गिरीश है, और जो हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पटेल भाई हैं वो बड़े गिरीश हैं। मैं पर्सनली उनसे बहुत प्रेरणाएं लेता हूं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि वो बहुत ही मृदुभाषी हैं और सदा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत नम्र हैं, एक डॉक्टर जैसे मुझे कभी नहीं लगे, बहुत हम्बल हैं, बहुत रचनात्मक हैं और बहुत हाई थिंकिंग वाली पर्सनालिटी हैं। और मेरे नाम और डॉक्टर गिरीश पटेल के नाम को लेकर कई बार कई स्थानों पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी कार्यक्रम मेरा होता है लेकिन बैनर पर डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी का फोटो होता है, और कभी कभी डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी का कार्यक्रम होता है सभा में वो बैठे होते हैं मंच पर लेकिन परिचय मेरा दिया जाता है। कई फोन मुझे डॉक्टर गिरीश पटेल समझ करके फोन आते हैं, डॉक्टर साहब ये बीमारी है, ये दवाई खा रहे हैं, कुछ कैसे करें, और कई बार डॉक्टर गिरीश पटेल भाई को मुझे समझ करके फोन आया करता है। विशेष तौर पर हमारा, मेरा और डॉक्टर गिरीश भाई जी का एक बहुत ही सुंदर, मजेदार, रमणीक और बहुत आदर सम्मान और बहुत मीठा संबंध है, और मैं हमेशा बहुत गदगद होता हूं जब भी मुझे डॉक्टर गिरीश पटेल जी का कोई सानिध्य प्राप्त होता है और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। दोस्तों, आज के विषय पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो माना जाता है कि जो भावनाएं होते हैं ये इंसान में इंसानियत पैदा करते हैं। इमोशन मेक्स अस ह्यूमन, डिनाइंग दीज इमोशन विल मेक अस बीस्ट। अगर ये भावनाएं अगर नहीं है तो हम शायद दानव जैसे प्रतीत होंगे। इमोशन मेक्स अस रियल, द वर्ड इमोशन का अर्थ ही है एनर्जी इन मोशन, और बी ट्रूथफुल टू योर इमोशन एंड यूज योर माइंड एंड इमोशन टू योर फेवर, नॉट अगेंस्ट देम। हमारी ये जो भावनाएं हैं ये मुझे फायदा प्रदान करनी चाहिए, ये मेरे विपरीत और मेरा दुश्मन नहीं बन जाना चाहिए। और शायद ये आपने कई बार सुना भी होगा कि पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, आप क्या कहते हैं वो व्यक्ति शायद भूल जाएगा, एंड दे मे इवन फॉरगेट व्हाट यू डिड, आपने जो किया शायद वो भी भूल जाएंगे, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील, आपने उन्हें कैसे महसूस कराया, ये व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। और मैं समझता हूं जैसे डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी गुजराती भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं, आप भी अनेक क्षेत्रों से जो हमारे साथ जुड़े हैं आपकी मातृभाषाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल, आत्मा की भाषा ये भावनाएं हैं। और मैं समझता हूं कि थोड़ा हम विज्ञान के बारे में इसको समझने का अगर प्रयास करें तो जब आदि काल में मनुष्य था और वो जंगलों में रहता था और वो हंट करता था खाने के लिए. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज द नॉर्म ऑफ दैट एरा. और शायद आज भी हम उसी मान्यताओं में, उसी विचारधारा में जीते हैं. उस वक्त, उस समय का मानव को डर था, वो हमेशा अपने एनवायरमेंट को स्कैन करता था, कहीं से कोई अचानक जानवर ना आ जाए, उसको सुरक्षित रहना है, उसको किसी को मार करके खाना है, तभी वो जी पाएगा. लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है. आज हम बहुत सुरक्षित वातावरण में, आज हम जंगलों में नहीं रहते, आज हम सिविलाइज सोसाइटी में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारी मान्यताएं, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, आज भी हम नेगेटिव रीति से ही एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं. कभी भी कोई भी कोई बात होती है हमारे जीवन में, सबसे पहला हमारा विचारधारा नेगेटिव बात पे ही जाता है. मान लीजिए अगर घर में बच्चा थोड़ा लेट आता है तो माँ का पहला विचार या भावना डर का होता है या नेगेटिव होता है, कहीं उसको कुछ हो ना गया हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि भावनाएं गलत होती हैं. अगर हम उसको सकारात्मक दृष्टि से देखें तो भावनाएं अच्छी भी हैं. मान लीजिए डर, वैसे तो डर एक अच्छा भावना नहीं है, लेकिन आप कोई मान लो पर्वत पे हॉलिडे मनाने गए हैं और अगर आप किसी ऊंचाई स्थान पर पहुंच जाते हैं, कोने में खड़े होते हैं, तो आपको थोड़ी घबराहट होती है. वो घबराहट आपको बचाने का प्रयास कर रहा है कि आप और नजदीक मत जाओ, आपको नुकसान हो जाएगा. ऐसे ही जिज्ञासा, इनक्विजिटिवनेस, ये हमारे अंदर की भावना कोई नई चीज सीखने में हमें प्रेरणा दे सकती है. कंपैशन, करुणा, हमारे अंदर दूसरों को मदद करने की भावना दे सकती है. स्नेह, हमारे एक दूसरे को केयर करने की हमारी भावना हमको दिला सकती है. और ये बहुत जरूरी है कि हम इन भावनाओं को समझें. और आज शायद हम थोड़े से नेगेटिव हो चुके हैं. और अगर हम आज का जो समय चल रहा है, जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसको भी अगर हम देखें तो ये थोड़ा संकट काल है, थोड़ा विकट है, थोड़ा चिंताजनक है. ऐसे समय पर शायद डॉक्टर साहब हमको बताएंगे, हम थोड़े स्वाभाविक रीति से थोड़ा स्ट्रेस में है, थोड़ा भयभीत है, थोड़ा परेशान है, थोड़े अनिश्चितता को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में है. किसी को अपनी नौकरी की चिंता होगी, भविष्य का, परिवार का, बच्चों का, जो मालिक हैं यहाँ होटल इंडस्ट्री से हैं, उनको चिंता होगी कि मैं लोगों को कैसे कंटिन्यू करूं, उनको मैं कहां से पगार दूं. तो थोड़ा थोड़ा सा हमारे अंदर ये स्ट्रेस और टेंशन हो सकता है. तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो बताएं कि ये इमोशंस का इम्पोर्टेंस क्या है. क्यों? क्योंकि जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अच्छा डाइट खाना चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छी नींद करनी चाहिए. लेकिन ये जो इमोशनल पार्ट है, ये हम ध्यान नहीं दे पाते. तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? और हमारे बीच हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो मैं ये चर्चा की शुरुआत करता हूं. और मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप अपने रिच एक्सपीरियंस के साथ हमको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि क्या ये कितना जरूरी है हम अपने इमोशंस को समझें और उसको फिर नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर लेकर आए. डॉक्टर साहब,
बहुत अच्छा इमोशंस पे आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड बताया. और उसको अगर शॉर्ट में कहना हो तो इमोशंस जो है वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी, फोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे सुनामी होती है, भूकंप होता है, तो उसके जो सोर्स उसका है उसमें पावरफुल एनर्जी होती है, जिसे नेगेटिव एनर्जी है. ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है कि जो आपको एक अगर डॉक्टर के रूप में मैं कहूं तो आपको बीमार भी कर सकती है और आपको स्वस्थ भी कर सकती है. जिसको मनोविज्ञान में कहते हैं कि आत्मा में ब्लॉक्स निर्माण होते हैं. वो वैसे जैसे एक प्रकार से कपड़े के दाग के धब्बे हो जाते हैं, एक तो वो ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो वो ब्लॉक्स आपको जीवन भर की समस्या निर्माण कर सकते हैं. ये कहेंगे कि कई जन्मों तक भी वो आपको परेशान कर सकते हैं अगर आपने उसको ठीक नहीं किया. अगर ठीक किया तो बहुत अच्छा जीवन भी आप व्यतीत कर सकते. मैं आपको दो उदाहरणों के द्वारा इसको बताना चाहता हूं. चाहे ये देखेंगे कि भी हर किस्से में ऐसा नहीं होता है, परंतु फिर भी ये जो दो सत्य घटनाएं हैं, ये दोनों सत्य घटनाओं से आप ये समझ पाएंगे कि इमोशंस को ठीक करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितना जरूरी है, इसको महत्व क्यों देना चाहिए. एक करीब 14-15 साल के लड़के को मेरे पास लेकर के आए और बाहर गांव से आए थे, और उसकी बीमारी को डायग्नोस किया गया था कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ये बोला गया था कि जिंदगी भर चलने वाला है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले बहुत खराब होंगे, बहुत हंगामा करेंगे, चोरी कर सकते, खराब संगत कर देंगे, ड्रग्स लेने लगेंगे। इसी डॉक्टर ने जीवन भर चलेगा, इसको हॉस्पिटल में डाल दो, कोई इलाज नहीं। मां बाप होते तो क्या है? मैंने कहा मैं बेस्ट ट्राई करता हूं, आप मुझे उससे पहले बात करने दीजिए। जब मैंने अकेले में उससे बात की, और एक तरीका होता है पूरा कि कैसे इंटरव्यू लेना, कैसे उसके दिल की बात को निकालना। जब मैंने वो शुरुआत की तो उसका पहला ही वाक्य था, मां ने मुझे मार। तो उसके अंदर वो बात पहले से थी ब्लॉक के लिए। बहुत लंबा होता है, मेरे पास टाइम तो बहुत ही कम है, पर तो जो कि सारी बात को मैंने समझा, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने मां को अच्छे से रिक्वेस्ट की कि देखो आप भी सही हो, मैं नहीं कहता हूं कि भी आप गलत हो, परंतु बेटे में यह इमोशन है वो डीप डीप चला गया है कि मां ने मुझे मार। अगर आप एक मेरी बात मान, तो थोड़ा सा उसको इमोशनली उससे माफी मांगो, इमोशनली थोड़ा उसको आप कहो कि बेटे तुम मुझे माफ कर दे, ये मेरा भाव नहीं था, ऐसे ऐसे मेरी गलती। और मां ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। अब सच नहीं मानेंगे, दो दिन के बाद जब वो आए, नहीं बॉम्बे में कहीं और जगह पर रहे थे और साइकोथेरेपी के लिए आ रहे थे, तो दो दिन के बाद आए तब उसके फादर ने कहा कि डॉक्टर साहब आज तो भरत मिलाप हो गया। तो मां ने कहा तो वो भी दोनों रोने लगे, और फिर उसके बाद वो लड़का कभी नहीं बोलता कि मां ने मुझे मारा। पूरी थेरेपी होती है, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो लड़का ठीक है। कहने का भाव है कि एक इमोशन अगर आप ठीक से उसको रिजॉल्व कर दो
जी,
बहुत बड़ा फायदा। और एक पावरफुल उदाहरण होता है, एक बहन को कैंसर था और यहां टाटा इंस्टीट्यूट में उनका इलाज चल ही रहा था, साथ साथ में थोड़ी डिप्रेस्ड भी थी, तो मेरे पास के लिए आते थे, जब भी आते थे तो मेरे पास भी लाए थे, फिर हम लोग काउंसिलिंग कर रहे थे, समझा भी रहे थे। और जब दो तीन इंटरव्यूज में ना मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि इनके पीछे जो डिप्रेशन का, भले कैंसर भी है ही है, पर और एक कारण है, वो लोग बहुत पैसे वाले थे, एक्चुअली बहुत पैसा, पर तो समस्या ये थी कि जो दो भाइयों का बंटवारा होना था, बंटवारे में दोनों मान नहीं गए थे। जब थोड़ा सा मैंने समझने की तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ था कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अभी वहां पर वो अटका कि भी बड़ा भाई ने कहा कि भी मैंने ये सब एस्टैब्लिश किया है, मैंने मेहनत की, छोटा तो बाद में आया, तो मुझे तो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, 600 करोड़ मुझे मिलना चाहिए, वो 400 करोड़ में मानना चाहिए। और छोटा कहता है नहीं, हम दोनों भाई है, हमको इक्वल मिलना चाहिए। और जोरदार झगड़ा, कोर्ट में भी केसेस चले गए और मां उसके बीच में दुखी हो रही। जैसे मैंने कहा कि काफी डिटेल्स होता है, ये केस ही 1 घंटा चलेगा वास्तव में। तो उसने बात बात में जब कहा तो एक बार ये भी कहा कि ये सब झगड़ा चल रहा था, तो एक बार मुझे विचार आया कि भी इससे अच्छा तो कोई बड़ी बीमारी हो जाए, मैं मर जाऊं तो अच्छा।
ब्रह्मा कुमारी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की तरफ से 3 डेज ऑनलाइन लाइव कॉन्फ्रेंस माउंट आबू हेडक्वार्टर से 15 से 17 मई स्पीड सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी ओवरकमिंग ओवरथिंकिंग इमोशनल हीलिंग कंपैशन इन एक्शन और राजयोगा मेडिटेशन जैसे गहरे विषयों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ समझाया जाएगा। साथ ही होंगे उमंग उत्साह बढ़ाने वाले गीत। देखिए अवेकनिंग चैनल पर।
उनका इलाज चल ही रहा था, साथ साथ में थोड़ी डिप्रेस्ड भी थी, तो मेरे पास के लिए आते थे, जब भी आते थे तो मेरे पास भी लाए थे। फिर हम लोग काउंसिलिंग कर रहे थे, समझा भी रहे थे, और जब दो तीन इंटरव्यूज में ना मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि इनके पीछे जो डिप्रेशन का भले कैंसर भी है ही है, पर और एक कारण है, वो लोग बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसा। और तो समस्या ये थी कि जो दो भाइयों का बंटवारा होना था, वो बंटवारे में दोनों मान नहीं रहे थे। जब थोड़ा सा मैंने समझने की तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ था कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अभी वहां पर वो अटका था कि भी बड़ा भाई ने कहा कि भी मैंने ये सब एस्टैब्लिश किया है, मैंने मेहनत की, छोटा तो बाद में आया, तो मुझे तो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, 600 करोड़ मुझे मिलना चाहिए, वो 400 करोड़ में मानना चाहिए। और छोटा कहता है नहीं, हम दोनों भाई है, हमको इक्वल मिलना चाहिए। और जोरदार झगड़ा, कोर्ट में भी केसेस चले गए और मां उसके बीच में दुखी हो गई। जैसे मैंने कहा कि काफी ये डिटेल्स होता है, एक केस ही एक घंटा चलेगा वास्तव में। तो उसने बात बात में जब कहा तो एक बार ये भी कहा कि ये सब झगड़ा चल रहा था, तो एक बार मुझे विचार आया कि भी इससे अच्छा तो कोई बड़ी बीमारी हो जाए और मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो थोड़े समय में उसको कैंसर हो, तो हमने पकड़ा कि भी कहीं इस बात में भी उसकी जड़ हो सकती। दोनों भाइयों को अलग अलग में समझाने की कोशिश की, छोटे को कहा तो नहीं मानना, उसने कहा नहीं मुझे इक्वली मिलना चाहिए। फिर बड़े भाई से हमने बात की, बड़े को भी हम तो भी ऐसे तो नहीं माना, लेकिन मैंने उनको उसको ये कहा कि भाई तुम माँ के लिए क्या कर सकते हो। उसने कहा मैं जान भी दे सकता। तो मैंने कहा कि 100 करोड़ नहीं दे सकते हो, क्या बड़ी बात है। तो इसे थोड़ा इमोशनली उनको तैयार किया हमने और बोला कि मां को 100 करोड़ दे दिया, मान लिया सच में, तो इमोशनली मान गया। सच मानिए कि जब ये रिजॉल्व हो गया तो थोड़े ही दिनों में उसका कैंसर ठीक हो गया।
क्या बात,
भले डॉक्टरों ने तो ये कहा कि स्पॉन्टेनियस रेमिशन, डॉक्टरों ने भी देखा जिसके रिपोर्ट नॉर्मल आ गए, क्योर हो गए, तो बोला नहीं ऐसा तो होता है कि भी हजारों में एक आध केस में वो स्पॉन्टेनियसली क्योर हो जाता है। ज्यादा बोला नहीं पर तू समझा कि देखो कहीं ना कहीं ये बात है। तो मेरा कहने का ये भाव है, भले हम क्लेम नहीं कर रहे परंतु जब भी जो भी बीमारियां जहां भी इमोशंस जुड़े हुए है उसको हमें ठीक करना चाहिए। उसको ठीक करेंगे तो बहुत प्रकार के फायदे हैं। ये दो मैंने आपको पावरफुल एग्जांपल्स बताए और गिरीश भाई जैसे इसे हम देखेंगे ना तो लोग अवेयर नहीं होते। चेक और चेंज बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हारा वंडरफुल स्टोरी टेलर,
थैंक यू गिरीश भाई।
एग्जाम्पल है तो आप बताइए और चेंज कैसे करें लोग।
जी 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 जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत पावरफुल एक दो एग्जाम्पल दिए और उससे हमारे अंदर एक थोड़ा सा रे ऑफ होप आ रहा है कि बीमारियों का कहीं ना कहीं अंडरलाइनिंग केस हो सकता है लेकिन हमें उसे समझना पड़ेगा। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है, थोड़ी मोटिवेशनल कहानी है। एक बार एक महिला एयरपोर्ट में जाती है, उसको फ्लाइट पकड़ना होता है तो वो पहुंचती है और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो पाती है कि उनका फ्लाइट डिलेड हो गया है। अब टाइम पास करने के लिए वो एक दुकान में जाती है, बुक शॉप में जाती है, वहां से बहुत अच्छी किताब उसने सुना था उसके बारे में वो खरीदती है, और वो एक पैकेट ऑफ चिप्स भी खरीद लेती है कि सोचती है कि भाई टाइम पास है, चिप्स भी खाऊंगी और किताब भी पढ़ूंगी। और बहुत आराम से जो वेटिंग एरिया होता है जहाँ पैसेंजर्स बैठे होते हैं, कुछ सीट खाली होती है, वहां बैठती है, अपना बैग बैगेज नीचे रखती है और वो बहुत प्यार से वो किताब पढ़ना शुरू कर देती है। और वो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग किताब होता है, थोड़े ही पलों में उसका पूरा ध्यान जो है वो किताब में मगन हो जाती है। वो थोड़े देर के बाद वो अपने आंखों के कोने से, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आईज, शी वॉचेस दैट उसके बाजू में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति भी उसका सामान रखा हुआ है, बड़े अच्छी तरह रिलैक्स होकर बैठा है, पांव में पांव चढ़ा करके बैठा है और वो बड़ा प्यार से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो इसके पैकेट ऑफ चिप्स में से चिप्स खा रहा है। अब ये जैसे वो देखती है तो उसका पूरा ध्यान जो है वो किताब से हट करके वो पैकेट ऑफ चिप्स और उस व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। अब उसको धीरे धीरे ये मन का भाव चेंज होता है कि भाई मेरा पैकेट ऑफ चिप्स से अगर इसको इतनी ही भूख लगी थी, कपड़े तो बहुत अच्छा पहना है, एयरपोर्ट में है, फ्लाइट में ट्रैवल करता है, लेकिन इसको इतनी भी तमीज नहीं है, इतना भी कर्टसी नहीं है कि मैडम कैन आई हैव चिप्स फ्रॉम योर पैकेट ऑफ चिप्स, इतना तो डिग्निटी होनी चाहिए। और वो बड़े प्यार से एक चिप्स खा रहा है और ये मैडम भी एक खा रही है, वो भी खा रहा है, वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड है। और देखते ही देखते वो देखती है कि एक लास्ट सिंगल पीस ऑफ चिप बचा हुआ है। अब वो सोचती है अपने मन में कि देखती हूँ ये क्या करता है, और वो व्यक्ति बड़े प्यार से वो लास्ट पैकेट, वो जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें से लास्ट चिप उठाता है, उसके दो टुकड़े करता है, एक टुकड़ा खाता है और जो आधा बचा हुआ था वो मैडम को कहता है, मैडम योर शेयर। अब ये सुनते साथ ये मैडम आग बबूला हो जाती है, इतना उसको गुस्सा आता है, शी इज फुल ऑफ रेज, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। एक तो मेरा पैकेट ऑफ चिप्स, वो लास्ट पीस भी मेरा था और उसमें उसको इतनी उसमें हिम्मत हुई कि वो मेरे को आधा टुकड़ा करके दे, और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे उन चीज को कंट्रोल करे, कैसे रिएक्ट करे। वो हाफ पैक वो जो चिप्स होता है उसको छीन भी लेती है, खा भी लेती है उसको, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता क्या। तभी उसके वो सुनती है कि उसके फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है, फ्लाइट नंबर सो एंड सो, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक इन। उसको बड़ा आराम लगता है कि उसका फ्लाइट का अनाउंसमेंट, एटलीस्ट वो इस व्यक्ति से तो दूर हो सकती है क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रही थी इसके कंपनी में। वो अपना बैग बैगेज बांधती है और बड़े बड़े गुस्से वाले तरीके से, बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव होकर के, और वहां से उठ करके चले जाती है। और पूरे भाव से वो इस व्यक्ति को बताना चाहती थी कि आई डिड नॉट लाइक वॉट यू डिड। और वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है कि वो क्या कर रहा है, उसको बुरा लग रहा है या वो सॉरी बोलना चाहता है। और वो जाती है चेक, वो बोर्ड करती है प्लेन, अभी वो प्लेन के अंदर बैठती है और कुछ समय के बाद उसको याद आता है, अच्छा मैं तो वो किताब पढ़ रही थी और वो कितना अच्छा किताब था, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरा मूड खराब कर दी, मेरी भावनाओं में नेगेटिविटी लेकर आया। वो सोचती है चलो जो हुआ सो हुआ, वो अपना ऊपर का जो बैगेज, जो हैंड बैगेज वाला कैबिन होता है उसको खोलती है, बैग निकालती है अपना बुक पढ़ने के लिए। और जैसे ही बैग के अंदर बुक निकालने को जाती है तो देखती है उसके अंदर एक पैकेट ऑफ चिप्स है। वो बहुत आश्चर्यचकित और सरप्राइज हो जाती है कि अगर ये पैकेट ऑफ चिप्स मेरा है तो वो किसका था। ओ माई गॉड, वो व्यक्ति मेरे पैकेट ऑफ चिप्स से चिप्स नहीं खा रहा था, मैं उसके पैकेट ऑफ चिप्स से खा रही थी। मेरा ध्यान किताब में इतना ज्यादा हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं किया कि मैंने उसके पैकेट ऑफ चिप्स में से खा रही थी। ओ गॉड, वो कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना डीसेंट था, कितना पोलाइट था, कितना हम्बल था। और तो और उसकी सज्जनता देखिए, उसका ग्रेटफुलनेस देखिए कि उसने उसका लास्ट पीस ऑफ चिप भी मुझे ऑफर किया और उसने कभी भी गुस्सा या नेगेटिव भाव नहीं रखा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो काफी मील दूर आ चुकी थी, शायद वो जिंदगी में उस व्यक्ति को वापस कभी मिल भी नहीं सकती और एक धन्यवाद या शुक्रिया या थैंक यू भी नहीं बोल पाती थी। तो मैं अब शायद उसने समय खो दिया है। इसीलिए क्या खूब कहा गया है, सोच और भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, सोच और भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। उसको चेंज करने में बहुत मेहनत लगती है। और मैं समझता हूं कभी कभी हम इतने किसी दूसरी बात में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं डॉक्टर साहब, कि हमारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है वही हम अवेयर नहीं हो पाते और उसके हम अधीन हो जाते हैं। जैसे चिंता है, नाराजगी है, हैरान होना है, पॉजिटिव भी है, उत्साह है, ईर्ष्या नेगेटिव है, ईर्ष्या है, डर है, चिढ़ना है, नफरत है, करुणा है, हताश होना है, दयालुपना है, ये बहुत सारी यू नो इमोशंस है। और शायद आज हम लॉकडाउन में कभी कभी हमारे अंदर भी किसी बात को लेकर ये सब भावनाएं जागृत होती होंगी, लेकिन हम इसको अवेयर नहीं हो पाते और इसको हम चेंज भी नहीं कर पाते। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे डिस्कशन को हम और कंटिन्यू करें, क्योंकि आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हैं, और मैं समझता हूं जो ये पुअर इमोशनल हेल्थ होती है, जो नेगेटिव भावनाएं होती है, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती है, हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी के किसी अंग में इन्फ्लेमेशन की भी जो रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जो इमोशंस होती है इसका इम्पैक्ट, जैसे आप पहले बता रहे थे कैंसर, और कैसे आपने इमोशनल लेवल पर उनको मदद की और उनका इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होने से शरीर पर असर होता है, डॉक्टर साहब बहुत स्पेसिफिकली आप हमें बताएं कि ये इमोशंस का हमारे शरीर पर, विशेष अंगों पर क्या नेगेटिव प्रभाव या क्या अच्छा प्रभाव होता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
मेन तो है ना, ये बताना चाहिए कि साइंटिफिकली
जी
तो ऑर्गन्स पर आपने कहा, तो 5 रूप से ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो हमारे बॉडी पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
ओके,
कि जो सभी समझ पाएंगे अगर सरल भाषा में बताया जाए। सबसे पहले तो जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, और उससे जो नर्व्स निकलते हैं, जो न्यूरॉन्स है
जी,
वो प्रभावित होते हैं।
ओके,
और उसमें 2 प्रकार के है, एक है सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक।
ओके,
जो आपने भी पहले बताया ना कि भी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है
जी,
तो वह एक एग्जैगरेट होता है और उससे फिर हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत सारी होती है।
ओके,
जो दूसरा है वह है एंडोक्राइन रिस्पॉन्स।
ओके,
जो हमारे शरीर में कई हॉर्मोन्स है, कि जो बुरे हॉर्मोन्स है वो बुरे हॉर्मोन्स हमारे बढ़ते हैं, या तो ये भी कह सकते हैं कि असंतुलन निर्माण होता है।
ओके,
असंतुलन के कारण बहुत सारी समस्याएं निर्माण होती है। तीसरी बात है कि अब जो समझ में आया है पूरा, कि ब्रेन में 1000 से ज्यादा केमिकल्स है। जो सुना है ना केमिकल का लोचा है
जी जी जी,
जो केमिकल से सारे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्बेंस के कारण आपको शारीरिक और मानसिक बहुत बीमारियां होती है।
ओके,
और भी चौथी बात है कि ब्रेन सर्किट्स निर्माण करता है
जी।
सरल बताना हो तो कहीं देखो कि भी गांव में भी रास्ता नहीं है, लेकिन लोग चलने लगे तो पगडंडी बन जाती है, फिर रास्ता बन जाता है, बहुत बड़ा रास्ता भी बन जाता है
जी,
लोग वहां चलते रहते हैं
जी।
तो ऐसे ही जो आप विचार करते रहते, जो व्यवहार करते रहते, जो इमोशंस निर्माण करते रहते, उससे आपके ब्रेन में सर्किट्स निर्माण होते हैं
जी।
और जब नेगेटिव इमोशंस है तो वह नेगेटिव सर्किट्स निर्माण होते हैं।
okay,
और वह भी आपको बीमार करते हैं। और पांचवी बात, जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है कि हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर्स है।
okay,
दिमाग में तो है ही, परंतु सभी ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में रिसेप्टर्स है, स्किन में रिसेप्टर्स है। तो ये जो हर एक ऑर्गन्स में जो आपके रिसेप्टर्स है, वो रिसेप्टर्स भी नेगेटिव इमोशंस के कारण डिस्टर्ब होते हैं।
okay,
जब ये रिसेप्टर्स डिस्टर्ब होते हैं तब भी आप बीमार होते हैं।
ओके,
तो ये पांचों को अगर आप अच्छे से समझे तो हम जागृत हो जाएंगे कि छोटा सा भी नेगेटिव इमोशन नहीं होना चाहिए
जी,
है ना। इतना हमें सजग होना है कि थोड़ी भी नेगेटिव छोटी सी बात भी सोचो कि भी ये सारा पांचों रूपों से मुझे डैमेज कर रहा है,
तो
चलते चलते बहुत बड़ी समस्या निर्माण कर सकता है
जी। जी जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वो विशेष 5 बातें बताई जिसकी वजह से हमारे नेगेटिव इमोशंस का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। और मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि मानव तभी बनता है जब उसमें भावनाएं होती हैं। और जब तक हमारा इमोशनल हेल्थ अच्छा नहीं होता है तो उससे हमारे संबंधों में बहुत ज्यादा कठोरता या कटुता आ जाती है, वो चाहे एक पति पत्नी के संबंध में हो, चाहे माता पिता और बच्चे के संबंध में हो। और कभी कभी हम किसी बात को लेकर व्यक्ति को ऐसा कुछ कह देते हैं जिसमें थोड़ा सा हमारे शब्द बहुत ही हार्श होते हैं, जिससे कि उस सामने वाले को बहुत ज्यादा उससे चोट पहुंचती है और धक्का लगता है। और उसके बीच में भले वो काम होगा या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन हमारे रिलेशनशिप, आपस का जो विश्वास है, आपस का जो एक बहुत मधुर संबंध होता है, वो जो ट्रस्ट होता है, वो ब्रेक हो जाता है। और मैं समझता हूँ इसमें कुछ जो सकारात्मक भावनाएं हैं, जैसे फॉरगिवनेस है, क्षमा है। मान लीजिए किसी ने कुछ गलती की, मैंने बड़े ने उसको कहा और वो उसने गलती कर दी। अब अगर हम उस गलती को लेकर, उससे जो नुकसान हुआ है वो तो है ही है, लेकिन उस नुकसान के अलावा भी अगर मैं उसको माफ नहीं करता हूँ, उसको गुस्सा करता हूँ, उसको उसका कारण बताता हूँ कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, उसको मैं ब्लेम करता हूँ, तो हो सकता है कि हमारे बीच का जो विश्वास है, वो जो संबंध है, वो जो कॉन्फिडेंस है मेरे प्रति, वो मालिक के प्रति या बड़ों के प्रति, वो जब टूट जाएगा तो उसके बाद हो सकता है उससे ये गलती से नुकसान हुआ है, लेकिन आगे चलकर जो नुकसान होगा वो शायद गलती भी करेगा, जानकर के भी करेगा, लेकिन वो उसको फिर वो सीरियसली नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है अब मैं अच्छा भी करूं तो भी मुझे, इन्होंने तो मुझे प्यार से बात ही नहीं की, मुझे डांटा ही है। इसी प्रकार एक जो भावना है जिसको हम कहते हैं कि जैसे पेशेंस है, जिसको हम धीरता कहते हैं। और हमने ये देखा है कि संबंधों में आज एक दूसरे के बीच में हमारे पास वो पेशेंस नहीं है, हम रिस्पॉन्स नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं जल्दी, तुरंत काम होना चाहिए, और वो तुरंत के प्रोसेस में हम शायद किसी को कटु वचन बोलते हैं, गुस्सा कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचा देते हैं, और उससे जो हमारे जो संबंध है प्यार का, शांति का, वो कॉन्फिडेंस का, उसमें थोड़ा सा जो है दरार आ जाती है। तो मैं समझता हूँ अगर मानव एक सामाजिक प्राणी, अगर कहते हैं हम परिवार में एक दूसरे के साथ रहना है, और आज लॉकडाउन के पीरियड में तो शायद हम सब घरों में हैं, तो यहाँ पर हमें इसका इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है पेशेंस के ऊपर। केरल में जून के महीने में एक सेल्समैन था और वो नौकरी की तलाश में था, और वो थोड़ा डेस्परेट भी था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, बारिश का मौसम था, तो वो एक नौकरी की तलाश में एक कंपनी में गया और कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तो अभी ढूंढ रहे हैं, हमारा भी सीजन है, तो आपको हम नौकरी पर रखते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपको बेचना है और ये हमारे लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है। तो वो बहुत खुश होता है कि मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन जब वो लिस्ट देखता है तो उसमें वो देखता है कि सब लॉन्ड्री वालों का लिस्ट है, जो लॉन्ड्री ओनर्स वाले हैं, जो कपड़े धोते हैं प्रेस करके, धुलाई करने वाले। तो थोड़ा सा वो होता है कि मैं इनको कैसे बेच पाऊंगा, तो लेकिन उनके जो मैनेजर होते हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं कि तुम कर सकते हो, मैं प्रयास करो। तो वो जाता है लॉन्ड्री वालों के पास जाता है और वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है, और 15 दिनों के अंदर वो ये पाता है कि उसने करीब करीब 80% अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया बेचने में। लेकिन बस एक ही समस्या होती है, उसको खुशी तो होती है कि वो प्रोडक्ट को बेच पाया, लेकिन वो जो कस्टमर्स होते हैं, जो लॉन्ड्री ओनर्स होते हैं, ये उसको तुरंत पैसा नहीं देते, वो कहते हैं कि हम 15 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड हमको देना पड़ेगा। तो वो अपने मैनेजर को कहता है, बोला नहीं ठीक है, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, आजकल सब क्रेडिट मांगते भी हैं, लेकिन तुम्हारा सेल्स तो बढ़ गया, आज नहीं तो कल तो पैसे आ ही जाएंगे। और जब वो पैसे मांगने जाता है तब उनके जो ये जो कस्टमर्स होते हैं ये कहते नहीं 2 दिन के बाद आओ, वो आसमान में देखते हैं और वो कहते नहीं 2 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना, वो समझ नहीं पाता है कि आप ये पैसे क्यों नहीं दे रहे। 8, 10, 15 दिन हो जाते हैं, अब उसको चिंता हो जाती है, मैंने प्रोडक्ट तो बेच लिया लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर मैं मैनेजर को कैसे कहूंगा। वो अपने मैनेजर को कहता है कि सर मेरे को थोड़ी चिंता हो रही है, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, मैं थोड़ा हताश फील कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पैसे नहीं दे रहे। तो वो उनको कहता है कि आप जब मांगने जाते हो तो वो क्या कहते हैं, वो बस आसमान को देखते हैं और कहते हैं 2 दिन के बाद आना। तो मैनेजर कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, आप लगे रहो और पैसे मांगते रहो। और वो कुछ दिन के बाद जब पैसे मांगने जाता है तो जून महीने का अंत होते होते वो जब पैसे मांगने जाता है तो वो पाता है कि वो जो कस्टमर्स है वो तुरंत उसको पैसे देना शुरू कर देते हैं और उसको समझ में नहीं आता है। और लेकिन जब वो पैसे देना जब शुरू करते हैं तो वो ये महसूस करता है कि आसमान खुला हुआ होता है, सूरज की किरण धरती पर पड़ रही है, काले बादल हट गए हैं और तुरंत वो जो ग्राहक है उसको पैसे दे देते हैं और 3-4 दिनों में वो लगभग 90% अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो ग्राहक हमको पैसे नहीं दे रहा था तुरंत इतने जल्दी कैसे दे दिया। वो अपने मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे तो ग्राहकों ने पैसे दे दिया, आपने मुझे कहा था आप लगे रहो और दे दिया। तो उसने कहा कि तुम्हें पता है उन्होंने पैसे क्यों दिए? बोला मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों पैसे दिए। उन्होंने कहा जो हमारा बिजनेस है ये बिजनेस जो है ये आप लॉन्ड्री वालों के पास जाते हैं, वो कपड़े धोते हैं फिर उसको सुखाते हैं फिर उसको प्रेस करते हैं फिर ग्राहकों को देते हैं, लेकिन जब बारिश के मौसम में कपड़े सूखते नहीं है, जब सूखते नहीं है तो वो थोड़ा लेट अपने कस्टमर्स को देते, उनको भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है जिसके कारण वो आपको पैसे नहीं दे पाते। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस धीरता आपने रखा, आपने हार नहीं मानी, आपने उनका पीछा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आपका पेशेंस की वजह से आपको ये सफलता प्राप्त हो गई। और वैसे भी कहा जाता है डॉक्टर साहब जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ा देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है। इसीलिए धैर्य रखने से प्रयास करने से समय बदलता है, इसीलिए हमको रिस्पॉन्स हमारे संबंधों में भी अगर आपको लगता है कहीं कटुता है तो हम नकारात्मक विचार और तुरंत रिएक्ट ना करें बल्कि उसको थोड़ा सा समय दें। और डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप विषय जैसे आपने पिछले बार 5 बातें बताई ऐसे आपको क्या लगता है एज अ साइकोथेरेपिस्ट मानव जीवन में बहुत सारे हमारे नेगेटिव मेजर 5 ऐसी कौन सी नेगेटिव इमोशंस है जो ओवरऑल होलिस्टिकली हमारे संबंध को हेल्थ को कारोबार को भविष्य को सफलता को इम्पैक्ट कर सकता है? सिर्फ ये लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपको ऐसे कौन से विशेष 5 इमोशंस लगते हैं विच कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल?
जी जी गिरीश भाई पहले तो मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपने जो पेशेंस की बात बताई ना रिलेशन का जो मैंने आपको पूछा
जी जी जी
तो एक पेशेंस तो जरूरी है परंतु कई बार तो इमोशंस के कारण हम ऐसा व्यवहार करते हैं हमें ही मालूम नहीं होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ।
अच्छा
जिसको कहते हैं ना हमारा सबकॉन्शियस काम कर रहा है
जी जी
पता नहीं कि आप कर रहे
जी जी
आमतौर पर कहते हैं ना कि भी आपका हिडन एजेंडा क्या है
जी 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 अंदर का छुपा हुआ भाव क्या है
जी
जी जी
तो वो इमोशन से कई बार वो सामने आता है। चलो बहुत बड़ा विषय उस पर ना जाए अभी आपने जो पूछा
जी
कि वास्तव में कहते हैं कि भी 2 ही इमोशंस है।
अच्छा
एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव।
ओके
नेगेटिव है फियर और पॉजिटिव है लव। वो वाला लव नहीं है
जी जी जी
लोग समझते हैं दिस इज डिफरेंट
जी जी
नेगेटिव में जो कुछ भी है ना वो फियर से निर्माण होता है वास्तव में।
ओके
कि देवी डर से आपको एंजाइटी हो सकती है असुरक्षा की भावना हो सकती है
जी जी
फिर कुछ लॉस हो गया ऐसा हो सकता है कि लॉस हो जाएगा
जी
उससे ग्रीफ भी हो सकती है सचमुच लॉस हुआ
जी
तो ग्रीफ होगा दुख होगा कि मैंने सब खो दिया व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा
जी
ना? और लोग आपकी डर आप ये भी चाहते हैं कि भी लोग मेरी बात को माने
जी
नहीं मानते तो आपको गुस्सा भी आता है
जी
और बहुत ही पावरफुल चीज है कि जब ये बात नहीं होती है तो आप बदला लेना चाहते हैं
जी
ऐसा हुआ नहीं तो एक बदले की भावना और जो सबसे पावरफुल चीज है वह है गिल्ट।
ओके हाँ जी
पाप की भावना
जी
और मैंने साइकोथेरेपी में देखा है कि जब तक व्यक्ति ये पाप की भावना से उभरता नहीं है हम उसको ठीक नहीं कर सकते।
ओके
कई बार मैं भी हार मान के छोड़ देता अभी हमारे एक 2 पेशेंट है।
अच्छा
कि बड़ा सिंपल सा है भी एक भाई है भी बूढ़े है ये तो एक्चुअली
जी
वो डिप्रेस भी है उनको OCD है।
ओके
बार बार हाथ धोना ऐसी बहुत चीजें तो दवा मांगेंगे कि मैं ए ली शायद तो आधे डॉक्टर हो गए अभी तो उसको सब दवा का नाम मालूम है
जी
लेकिन वो क्या बोलते हैं मतलब कि मैंने बचपन में बहुत बुरा किया, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं, भगवान भी मुझे माफ नहीं कर सकता है। और जब हमने सुना तो उसने कुछ बुरा नहीं किया। 100 में से 70% लोग वैसा कुछ ना कुछ तो करते ही है। कम से कम मैंने 2 सेशन हमने ऑनलाइन किया था, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं, फिर मैंने अल्टीमेटली छोड़ दिया। उनको यही बोला कि देखो भैया तुमको इस पे ही काम करना पड़ेगा, कि भी हम ऐसे हजारों लोगों को सुनते, आपने कुछ भी बुरा नहीं किया, जब तक तुम इस गिल्ट से बाहर नहीं आओगे तुम ठीक नहीं हो सकते। ये देखेंगे तो 4-5 मेन नेगेटिव इमोशंस है कि जिस पर हमें काम करना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब एक बार और रिपीट करेंगे ये 3-4 इमोशन?
अगर 5 इमोशंस को अगर हम इस प्रकार से देखना हो
जी,
एक तो है फियर
जी,
अभी उससे रिलेटेड है एंग्जाइटी आती, फिर देख सकते ग्रीफ
जी, दुख,
लॉस की बात आ गई
जी,
एंगर
जी,
एंगर, फिर हैट्रेड
जी,
और 5वां गिल्ट
जी जी जी,
पाप की भावना की मैंने बुरा किया
जी जी जी,
से 5 है ना वो बहुत ही नेगेटिव इमोशंस है जिस पर हमें सोचना भी चाहिए कहां मेरे में है, सूक्ष्म में भी है और उससे मुझे मुक्त होना है।
जी 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 बहुत अच्छा।
कट
जी,
क्या पूछना है फिर? बस बीडी
पॉजिटिव इमोशंस।
ओके ओके ठीक गुड।
हाँ जी
गिरीश भाई
जी,
नेगेटिव इमोशंस तो मैंने बताया
जी,
अभी आप थोड़ा ये बताइए कि ऐसे ही पॉजिटिव पावरफुल इमोशंस कौन से है कि जो ये नेगेटिव को काउंटर कर सकते हैं?
जी जी डॉक्टर साहब, मुझे याद आता है मेरा जो ब्रह्मा कुमारी इसका जो सफर रहा है पिछले 23 साल का, इसमें मैंने एक ही बहुत ही सुंदर सकारात्मक बात अनुभव भी किया है और मैंने काफी लोगों को ये बात शेयर भी की है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो नेगेटिव इमोशंस है इससे हम कैसे उभरें। वैसे तो वो मैं प्रश्न डॉक्टर साहब को वापस पूछूंगा साइकोथेरेपी और थोड़ा सा स्पिरिचुअल आधार से, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना एक जो आध्यात्मिक एक जो टूल है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और थोड़ा लॉजिकली मुझे भी बहुत पसंद आया है कि कहते हैं अंधकार, अंधकार के अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, अंधकार प्रकाश की कमी है, इट इज डार्कनेस इज जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट, जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है, और अगर कहीं अंधकार है तो मैं जाकर अंधकार को काट नहीं सकता हूं, उसको भगा नहीं सकता हूं, उसको झाड़ू पोछा लगाकर वहां से हटा भी नहीं सकता हूं। और ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर मुझे अंधकार को हटाना है कमरे में तो हम लाइट को ऑन करेंगे या मोबाइल का टॉर्च को ऑन करेंगे या दिया जलाएंगे कैंडल जलाएंगे, हमारा पूरा ध्यान प्रकाश के ऊपर होता है, जहां हम प्रकाश का निर्माण करते हैं, प्रकाश का उत्पादन करते हैं, प्रकाश का को क्रिएट करते हैं, उतना ही अंधकार ऑटोमेटिकली दब जाता है या खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि और मानव का हमेशा यही प्रयास रहा है कि वो लाइट पर काम करता है। आज आप दुकान में भी जाएंगे तो 5 वॉट का बल्ब 10 वॉट का बल्ब हम खरीदते हैं, हमने कभी अंधकार का निर्माण भी नहीं किया और अंधकार का कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते रात को 2 बजे 10 किलो का अंधकार था, इट वॉज जस्ट दैट सूर्य नहीं था या चांद नहीं था इसीलिए अंधकार है। तो मैं समझता हूं किसी भी नेगेटिव इमोशन अगर मेरे जीवन में है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इमोशन लाइट की कमी की वजह से ये शायद जागृत हुआ है। इसको मैं एक और भाषा में आपको बताना, मतलब दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है, अगर हम उसको ठीक से नहीं करेंगे तो उसमें वीड्स पैदा हो जाते हैं। उसी तरह यदि मन में सकारात्मक विचार और भावनाएं ना भरी जाए तो उसमें नकारात्मक विचार भावनाएं अपनी जगह बना लेते हैं, उसका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस या हो सकता है। तो मैं समझता हूं डर बेसिकली, वैसे तो डॉक्टर साहब उसको बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है डर हिम्मत की कमी है, चिंता निश्चिंता की कमी है, नफरत स्नेह की कमी है, क्रोध शांति की कमी है, दुख सुख की कमी है, और यही सब अच्छे गुण हैं जो हम जीवन में चाहते हैं, और यही मानव का आदिकाल से प्रयास रहा है कि वो सुखी रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बातें आ गई हैं। तो हमें अच्छे गुणों पर ध्यान देना है। तो डॉक्टर साहब, ये डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा दर्शकों की तरफ से, अब हमको नेगेटिव और अच्छा का पता चल गया और हमको ये लॉजिक भी पता चल गया कि अच्छा को क्रिएट करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि वातावरण में और जो इर्द गिर्द हो रहा है वो सब तो नेगेटिव ही है, अब मैं ये अच्छी भावनाओं कैसे लेकर आऊं? कोई ऐसा टेक्निक हो या स्पिरिचुअल ज्ञान की बात हो या कोई ऐसा मेडिटेशन टेक्निक हो, हम थोड़ा सॉल्यूशन पे आना चाहते हैं। कई लोगों को ऐसी छोटी मोटा डर या कोई गिल्ट या कोई बदले की भावना हो सकती है जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसका निवारण कैसे हो। आई मीन हाउ डू वी क्रिएट पॉजिटिव इमोशंस?
ऐसे तो देखो ना गिरीश भाई, आपने ऑलरेडी उत्तर दिया है कि अंधकार को दूर नहीं करना है, प्रकाश को लाना है।
जी,
ऐसी यही बात है वो एक अलग रूप से।
जी जी,
तो आमतौर पर भी कहा जाता है कि जब मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण करता है पत्थर से,
जी,
तो मूर्ति तो अंदर होती ही है।
करेक्ट।
वो सिर्फ क्या करता है कि जो अनावश्यक चीजें हैं ना उसको वो दूर करता है। जो अनावश्यक चीजों को दूर करता है तो मूर्ति निर्माण हो जाती है।
जी,
तो ऐसे ही जो अनावश्यक है उसे हमें दूर करना है।
जी।
या तो और एक सिंपल वे में मैं आपको बता सकता हूं।
जी,
तो और अच्छे से सभी को रिलेट कर पाएंगे।
जी।
कि जो हमारा ओरिजिनल गुण है, जैसे पानी का ओरिजिनल गुण क्या है? पानी का ओरिजिनल गुण है शीतलता।
जी,
परंतु पानी जब अग्नि के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है।
जी,
करेक्ट।
जी,
जब उसको अग्नि से दूर कर दो तो 5 घंटे के बाद क्या होगा?
वापस
से ठंडा हो जाएगा।
जी,
पानी को तो ठंडा होने में 5 घंटे लगते, परंतु हमें जो आत्मा के मूल गुण है कि वही वास्तव में पॉजिटिव इमोशंस है, उसका अनुभव करने में 5 सेकंड भी नहीं लगे।
अच्छा।
सिर्फ हमें वो जो आज आत्मा है ना, शरीर से अटैच हो गई है, ने अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, जैसे पानी अग्नि से अटैच हो गया, उसने अग्नि के गुण ले लिए। वैसे ही अगर हम ये शरीर का जो अटैचमेंट है, ऐसा कुछ मैं नहीं बोलता हूं कि भी शरीर को छोड़ दो, पर तो जो शरीर के साथ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ना, कि भी मेल और फीमेल, मैं धर्म के साथ हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अपने ऑक्यूपेशन के साथ हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उससे अगर हम अपने आप को डिटैच कर ले और ये कर ले, मैं वह एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूं।
ओके।
हमारे शास्त्रों में बात थोड़ा, लोग कई बार इसको समझते नहीं, परंतु बहुत अच्छे से बताया कि दो ही है, कहते कि ब्रह्म सत्य और दूसरा सब जो है ना वो मिथ्या है।
ओके।
वो वास्तव में अगर गहराई से देखो ना तो आत्मा की बात है।
ओके।
हाँ, कि वो जो हमारे में स्पिरिचुअल एनर्जी है वही सत्य है, दूसरा सब मिथ्या है, दूसरा सब माया है।
ओके।
जब वो भाव आएगा तो ऑटोमेटिक जो आत्मा के गुण है वो आत्मा के गुणों का हम अनुभव करेंगे, बस। और कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं।
ओके।
और ये रिलीजन भी नहीं है, इसको रिलीजन नहीं समझे।
ओके।
जैसे हम विज्ञान में एटम को स्टडी करते,
जी,
आज देखो कि जो भी क्वांटम फिजिसिस्ट है कितनी मेहनत करते हैं एटम को स्टडी करने के। तो ऐसे ही हमें आत्मा को स्टडी करने का थोड़ा सा अभ्यास करना है तो ऑटोमेटिक वो सारे पॉजिटिव गुण हमारे में आ जाएंगे।
जी जी
जी गिरीश भाई, ये बात तो मैंने बताई और आपको भी इसका पूरा अनुभव है।
जी जी।
तो आप जो भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं उसको ये बताओ कि अभी ये सब थियरी नहीं,
जी,
तो प्रैक्टिकली जो आत्मा के गुण है,
जी,
उसको अगर एक्सपीरियंस करना हो तो कोई आपके पास प्रैक्टिकल तरीका?
जी, डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुत ही कोर बात हमें बताई है कि हमारा जो रॉन्ग आइडेंटिटीज होती है ये हमारे अंदर गुस्से को, चिंता को, भय को लेकर आता है, और शायद आज हम सारे ही लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि मैं घर का मुखिया हूं और अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो बच्चों का क्या होगा. एंड इट इज बिकॉज आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज अ फादर और मैं फादर और चाइल्ड के रिलेशनशिप का सुख को उस पोजिशन को अच्छी रीति निभाने की बजाय उसके कारण मैं डर में हूं. और मैं समझता हूं जैसे आपने कहा आत्मा का जो मूलभूत गुण होता है वो है सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति. और हम आमतौर की भाषा में भी ये कहते हैं कि मेरा गाड़ी ये है मेरा घर ये है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन मैं तो गाड़ी नहीं हूं मैं तो घर नहीं वो अलग है मैंने उसको प्राप्त किया मैंने उसको खरीदा है. इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं वॉट यू हैव और वॉट यू हैव बिकम इज नॉट वॉट यू आर. मैं डॉक्टर बन गया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया लेकिन वो तो मैंने पढ़ाई करके उस विषय से संबंधित मैंने एक एक्सपर्टाइज की डिग्री प्राप्त की है लेकिन मैं ओरिजिनली में शांत स्वरूप आत्मा हूं. और इसका जो सबसे अच्छा टेक्निक है मैं समझता हूं जितना हम आसानी से ये देह और रोल के भान को वो मेडिटेशन के प्रोसेस में भूल करके 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अपने ओरिजिनल आत्मा के मूलभूत स्वभाव में अगर आ जाएं. इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो ये जिंदगी आपकी है बस इसे अपने मस्त ओरिजिनल स्वभाव में जियो.
एक्सलेंट.
ना प्रभाव ना अभाव अपने स्वभाव. अब मेरा ओरिजिनल स्वभाव ये है कि आई एम लव आई एम पीस. जैसे मनुष्य पानी पीता है क्योंकि उसको प्यास लगती है क्योंकि मानव का शरीर लगभग 70-80% पानी का बना हुआ है क्योंकि पानी का बना हुआ है इसीलिए इसे पानी की जरूरत पड़ती है. मुझे भी स्नेह सम्मान एक्सेप्टेंस शांति प्योरिटी पावर की आवश्यकता है क्योंकि मैं आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही ये है. और आई एम पीस आई एम लव आई एम पावरफुल आई एम प्योर इसको अनुभव करने के लिए यू नीड नॉट डू एनीथिंग. हमको लगता है हमें ये सब बहुत कुछ करना पड़ेगा. मैं बहुत धन कमा लूं मेरा शादी हो जाए मेरे बच्चे हो जाए और फिर मैं पत्नी हमसे बहुत प्यार से हमको संभाले प्यार करे सम्मान दे देन आई विल एक्सपीरियंस पीस देन आई विल एंजॉय लाइफ देन आई वुड यू नो एक्सपीरियंस पावर. लेकिन एक छोटा सा एक मिसकंसेप्शन है शायद हमारा इक्वेशन में थोड़ा गलती हो गई है. और आध्यात्मिकता हमें ये बताता है कि मैं शरीर से अलग जैसे आप बता रहे थे मैं वो चैतन्य आत्मा हूँ एक बिंदी स्टार हूँ वो एनर्जी है और उसके ओरिजिनल स्वभाव में जितना देर रह करके मैं अगर कार्य करूं अगर मैं शांति की स्थिति में अब लॉकडाउन के बाद अपना इंडस्ट्री का क्या होने वाला है मेरा जॉब का क्या होने वाला है उसके लिए मैं प्लान करूं तो हो सकता है बिना चिंता बिना डर के मैं ये टाइम को भी और आने वाले परिस्थिति को मैं अच्छी तरह संभाल सकता. लेकिन अगर भविष्य में होने वाली बात को चिंता ही करता रहूंगा क्या होगा कैसे होगा और उसके कारण फिर आपने कहा शरीर में फिर वो नेगेटिव हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी वो नेगेटिव केमिकल इम्बैलेंस और वो इलेक्ट्रिकल वो सब गड़बड़ हो जाएगा तो फिर वो बीमारी स्ट्रेस के कारण हो जाएगा. और मैं समझता हूं धन संबंध प्राप्तियां सफलता ये सब बाहर की जो बातें हैं ये हमारे सुख शांति और आनंद का सोर्स नहीं है. ये गलत फहमी और ये इसीलिए हो गया शायद बचपन से माता पिता ने टीचर्स ने मुझे यही कहा तुम क्या बनोगे क्या पढ़ के बनोगे और अगर तुम इंजीनियर नहीं बने डॉक्टर नहीं बने तो फिर तुम्हारा जिंदगी खुशी नहीं रह पाएगा. तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि खुशी का आधार है अच्छे स्कोर करना खुशी का आधार है अच्छा कमाना खुशी का आधार है फिर शायद किसी ने बड़े होकर कहा तुम अच्छा कुछ मैनेजर धन नहीं कमाओगे तो तुम्हें अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा वो गरीब वाली आएगी ये सुंदर नहीं दिखी. तो मैंने सोचा कि फिर मेरा खुशी का आधार कोई अच्छी सी जो लाइफ पार्टनर है. तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर सुख शांति को ही अनुभव करने से मेरा डर चिंता हट सकता है तो इसका सोर्स क्या है. अगर ये धन संपत्ति से अगर नहीं प्राप्त होगा तो इसका जैसे कि सूर्य है सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और वो एनर्जी के कारण आज मानव जीवन इस संसार में संभव है फिजिकल तौर पर हमारे वेजिटेशन और यू नो लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी. तो ये सुख शांति आनंद ये आत्मा का लाइफ को अगर जीना है अच्छी तरीके से तो उसका सोर्स क्या है इसको हम कहां से प्राप्त करें उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें.
ऐसे तो बड़ा सिंपल है
जी
कि आत्मा में ये गुण है
जी,
आत्मा के ओरिजिनल है
जी,
उसका सोर्स है परमात्मा
जी।
ये बात तो सरल सी है
जी,
कितना भी लोग कहे परंतु सब भगवान को मानते।
ओके,
साइंटिस्ट भी मानते
जी,
अभी समय नहीं तो प्रूव भी कर सकते।
ओके,
इसमें जो मूल चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सोर्स से प्राप्त कैसे करें, अगर इसमें भी विज्ञान को बताना हो
जी,
जो मैं आपको क्वांटम फिजिक्स की बात बता रहा था
जी,
क्वांटम फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है ना, एक पूरा साइंस है कि जो इंजीनियरिंग फील्ड के है, जो फिजिक्स की फील्ड के जो जानते हैं, जिसको कहा है एंटेंगलमेंट।
ओके,
एंटेंगलमेंट क्या है कि एक एटम अभी यहाँ बॉम्बे में है, दूसरा एटम ब्राजील में है।
ओके,
और अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो बॉम्बे वाला एटम क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसको ब्राजील वाले एटम से एंटेंगल कर दो, अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डेफिनेटली वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा।
ओके,
हाँ, वो देखने की जरूरत नहीं है, इट इज 1000% करेक्ट।
अच्छा,
हाँ, ये प्रिंसिपल एंटेंगलमेंट का।
ओके,
अभी स्पिरिचुअलिटी में इससे उल्टा है।
ओके,
स्पिरिचुअलिटी में अगर आप भगवान से एंटेंगल होते हैं,
ओके,
सी दैट वे नो, योग इज टू हैव एंटेंगलमेंट विद गॉड।
ओके,
भगवान से आप एंटेंगल होते हैं ना, तो भगवान के जो गुण है वही आप फील करेंगे।
ओके,
जैसे कि भगवान अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आप भी क्लॉकवाइज घूमेंगे।
अच्छा,
तो कहेंगे इफ गॉड इज रेडिएटिंग पीस, यू विल ऑल्सो रेडिएट पीस।
ओके,
नहीं जो सिंपल है, हम सब जानते हैं कि भी मैग्नेट में नेगेटिव और पॉजिटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
जी,
लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कहेंगे कि सेम पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
ओके,
तो ऐसे ही योग इज टू एंटेंगल विथ सुप्रीम।
ओके,
बिकॉज सुप्रीम इज ओशन ऑफ पीस।
ओके,
तो एज सून एज यू एंटेंगल यू विल एक्सपीरियंस पीस, कुछ करना नहीं
जी,
जैसे नहीं एक पूरा फ्लो आने लगेगा
जी,
प्यार प्रेम से आप भरपूर हो जाएंगे।
ओके,
है ना, आनंद से भरपूर, इतना आनंद अनुभव आपको लगेगा कि अरे माय गॉड इतना आनंद मुझे आया, कभी आपने कल्पना भी नहीं की हो इतना आप आनंद अनुभव करेंगे।
ओके,
है ना, इतनी खुशी का अनुभव करेंगे
जी,
इतना आप शक्ति का अनुभव करेंगे कि आई एम एन पावरफुल सोल
जी,
बस सिर्फ जरूरत है कि उस प्रोसेस को करना पड़ेगा
जी,
और सही रूप से करना पड़ेगा।
ओके,
अगर कहीं कोई ना कोई रूप से सभी परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं
जी,
लेकिन उसमें बहुत गलतियां होती है।
ओके,
और उसके कारण फायदा होने के बदले उल्टा नुकसान होता है।
विधि से सिद्धि की प्राप्ति होती है, जैसे कहा जाता है विधि से सिद्धि की प्राप्ति होती है, तो ये जो
विधि गलत है तो सिद्धि होगी नहीं, उल्टा है, उसमें गलत प्राप्ति होगी
जी जी जी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये बताया है कि वो जो सोर्स है वो निराकार परमपिता परमात्मा है, और उससे जो कनेक्शन की जो विधि, अगर जैसे कि दो तारों को जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वैसे ही शायद हम अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ें, और शायद इसी को राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप हमको इसके बारे में, इसकी विधि के बारे में और एक अनुभव भी कराएं कि हम कैसे परमात्मा के साथ कनेक्ट हों। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा आसानी से, इजीली थोड़ा सा अपने मन के भावों को हल्का करें, शांति को अनुभव करें। तो इस डिस्कशन में मैं आप सबके सामने एक बहुत ही मशहूर कलाकार से मिलाना चाहूंगा, जो जिसको सुनकर आप प्रभु स्मृति में खो जाएंगे, और ही इज अ फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर देवोजीत साहा, वे अनेक हिंदी बंगाली और असमीज फिल्मों में उन्होंने अपने गीत प्रस्तुत किए हैं, और शायद इस कलाकार को जब आप और इस पर्सनालिटी को आप जब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, आपने इन्हें सन 2005 में जी टीवी के जो रियलिटी शो था सारे गामा पा, उस चैलेंज में आपने देवोजीत साहा को देखा होगा, और उनकी विशेषता ये रही कि उन्होंने उस जो रियलिटी शो था उसका जो वॉइस ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो उन्होंने प्राप्त किया था, हमारे जो फेमस सिंगर्स ने उनके आवाज की बड़ी प्रशंसा की थी, और ऐसा ही नहीं, और वो 2006, 2007, 2008 में सारे गामा पा के एंकर भी रहे हैं, और सन 2007 में जो सारे गामा पा का लिटिल चैंप का जो रियलिटी शो था उसके वो ग्रैंड जूरिस्ट भी रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि देवोजीत साहब भाई, आप हमें अपने मधुर सुरीली आवाज में हमें मंत्र मुग्ध कर दें, और जैसे भी कहा गया है, जिंदगी के मायने तुझसे हैं, जिंदगी के मायने तुझसे हैं, जिंदगी के ख्वाहिशें भी तुझसे हैं, तू क्या जाने तू क्या है मेरे लिए। उस परमात्मा को हम पहचानते नहीं है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर परमात्मा का साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। तो दर्शक भाई और बहनों, आप इस गीत का लुत्फ उठाएं, इसको महसूस करें कि डरने की कोई बात नहीं है, आने वाला समय आसान होगा, इजी हो गया, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है।
ला 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 ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। के नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। ये गीत का तो हमने बहुत ही लुत्फ उठाया, जैसे कि हम इस शरीर से और चिंताओं से परे हो गए, लेकिन मैं चाहूंगा कि दर्शक इसको समझें कि ये प्रक्रिया को करना कैसे है, राजयोग मेडिटेशन को करना क्या है, कैसे है, और इसका हमको आप एक छोटा सा झलक दिखाएं, अपने मन के विचारों को कैसे क्रिएट करना है, वो शक्तियों को कैसे लेना है, कनेक्ट, आपने वो एंटेंगलमेंट कहा था, इसको कनेक्ट कैसे करना है, इस पर आप थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दें।
वेदित एंटेंगलमेंट बहुत ही सिंपल है
जी,
ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल उसे गहराई से भी समझना चाहिए। समय की सीमा के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कुछ बातों की, तो जो सिंपल ध्यान ये रखना है
जी,
कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, वो दे ही रहा है।
ओके।
और
प्रार्थना नहीं करनी है,
प्रार्थना नहीं, वो दे रहा है, उसके पास है ही, जैसे बच्चा बाप से मांगता नहीं है
जी।
दूसरा कि कोई भी नेगेटिव बात नहीं,
ओके,
ये नहीं कि भी भगवान तो सर्वशक्तिमान है मैं नीच हूं, ऐसा नहीं।
ओके।
वो सर्वशक्तिमान है, मैं भी शक्ति स्वरूप, मैं उनकी संतान
जी,
और हर एक बात पॉजिटिव।
ओके।
दूसरी एक बात आप देखेंगे, मैं प्रोसेस बताऊंगा, तो
जी,
जब हमें परमात्मा से एंटेंगल होना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा।
ओके।
अगर मैं ये शरीर का रूप लेकर के जाऊंगा तो मेरी उनसे मुलाकात हो ही नहीं सकती।
ओके।
तो पहले मुझे ये शरीर के भान को हटाना पड़ेगा।
ओके।
और मैं आत्मा हूं उस बात को पक्का करना पड़ेगा।
ओके।
और राजयोग का आधार, ऐसे नहीं कोई भी मिलन होता है तो उसमें कोई ऊर्जा काम करती है
जी।
तो यहाँ पर जो ऊर्जा काम कर रही है वह संकल्प शक्ति, विचारों की शक्ति।
ओके।
और जो हमारी पोजीशन है सिंपल हो सकती है, जैसे हम बैठे आराम से भी बैठे, आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं, चाहे तो बंद भी करे
जी।
या शुरू में कईयों को लगता है कि आंखें बंद करने से शायद हम अच्छा चिंतन कर पाएंगे, हम थोड़ा इंटरनलाइज कर पाएंगे।
ओके।
और इसमें विजुअलाइज करना भी अच्छा होता है, आप चित्र भी निर्माण कर पाओ तो और अच्छा फील होता है, तो कईयों को वहां मदद मिलती है। तो शुरू में आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, वैसे आराम से बैठना है
जी।
और सबसे पहले मैं आपको कुछ चिंतन दूंगा कि मैं अपने विचारों के बारे में ही सजग होता हूं। जैसे ही मैं अपने विचारों के बारे में सजग होता हूं, विचारों की गति शांत होती है। अब मैं अपने विचारों को मोड़ सकता हूं। यह शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, नाशवान है, परंतु वास्तव में मैं एक अविनाश दिव्य चेतना मस्तिष्क के मध्य में निवास कर सारे शरीर का संचालन कर रही। जैसे ही इस जगमगाती जो मस्तिष्क के मध्य में जगमगाती ज्योत के प्रति मैं सजग होता हूं, हल्केपन का अनुभव होता है, शांति का, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आत्मा का घर परम धाम भी शांति धाम है, जहां शांति ही शांति है। मेरे पिता परम पिता परमात्मा भी मेरी ही तरह अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, परमात्मा भी शांति धाम के वासी है। जैसे ही मैं इस बात में एकाग्र होता मन यहां लगता है और गहरी शांति का अनुभव हो रहा। शिव पिता शांति के सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप शुद्धता से मेरे सर्व संबंध पिता के साथ साथ मां भाई मित्र शिक्षक सर्व संबंध मेरे परमात्मा से सर्व संबंधों का प्यार मिल रहा है। मैं एकदम हल्का जैसे सर्व संबंधों के प्यार में खो जाते एकदम हल्का उसी में तल्लीन हो जाते मेरी मूलभूत मेरा मनोबल बढ़ रहा जैसे अनुभव होता है लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक एक विचार पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में अनेक भावनाएं मेरे नियंत्रण में मैं चाहूं वैसे मेरे इमोशंस को मैं दिशा दे सकूं जो समझ में आते हैं सारा सोर्स सर्व शक्तियों का सर्व गुणों का परमपिता परमात्मा ही है। कर्म करते हुए भी मैं पिता परमात्मा को साथी बनाकर साक्षी भाव से निमित्त भाव से सभी कर्म को कर
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और जो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। सुबह और शाम आगे के जो भी हमारे ऑनलाइन सेशन हैं उसे आप अवश्य देखें। राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हैं उसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। यही आशा करते हैं कि आने वाला आपका जो समय है वो बहुत ही आप सुरक्षित स्वस्थ और समृद्ध होकर के आगे के जीवन को जिएं। या खुद किसी ने कहा है दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है मगर जरिया बनकर किसी को बचाना बहुत महान है। तो हमारे लिए परमात्मा ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर गिरीश भाई जी एक जरिया बनकर के आए हैं और इस जरिए के द्वारा हम अपने जीवन को और अपनों को जीवन को महान बनाएं। इन शुभ आशाओं के साथ डॉक्टर साहब का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। समय का घंटा बजता रहेगा पर विचारों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चलिए शाम 5 बजे पुनः मिलते हैं, आत्म अनुभूति के लिए मन के द्वार को खोलते हैं। इन अनुभूतियों के सुंदर पलों को अपनी यादों में संजोते हैं और कल पुनः सिस्टर शिवानी के दिल की आवाज को सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की तरफ से 3 डेज ऑनलाइन लाइव कॉन्फ्रेंस माउंट आबू हेडक्वार्टर से 15 से 17 मई। स्पीड, सेफ्टी, स्पिरिचुअलिटी, ओवरकमिंग ओवरथिंकिंग, इमोशनल हीलिंग, कंपैशन इन एक्शन और राजयोगा मेडिटेशन जैसे गहरे विषयों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ समझाया जाएगा। साथ ही होंगे उमंग उत्साह बढ़ाने वाले गीत। देखिए अवेकनिंग चैनल पर टाटा स्काई 1084, जियो 1060।